ओम शांति। हम सबके बीच में नीमच से आदरणीय सुरेंद्र भाई साहब अपना बहुत अद्भुत और अनोखा अनुभव कि किस तरह से वैद्यनाथ शिव बाबा ने आपको इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में ये बोनस लाइफ प्रदान की है। आदरणीय भाई साहब 1974 में इस ईश्वरीय ज्ञान में आए और 75 से ही लगभग 50 वर्षों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त हुए और लास्ट 48 ईयर से आप समर्पित रूप से बाबा के घर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लौकिक में आप साइंस ग्रेजुएट हैं और बचपन से ही कविता लिखना, पेंटिंग, खेल, ये सारे शौक आपको रहे और जब बाबा के ज्ञान में आए तो सबसे बड़ी बात ये कि 93 में आपको ब्रेन कैंसर जैसा असाध्य रोग हुआ, लेकिन कहावत है जाको राके साइया मार सके ना कोई। आपको बाबा पर इतना निश्चय और उस निश्चय की इतनी पराकाष्ठा कि जब डॉक्टर्स ने अमेरिका तक से ये कह दिया, आपकी फाइल में लिखा गया कि दिस फेलो कांट पास सितंबर 93, मतलब 93 से सितंबर 93 के बाद आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान की चमत्कार के आगे मेडिकल साइंस भी फेल है और उस निश्चय ने ये सिद्ध कर बताया। तो आज हम सभी भाई साहब से यही अनुभव सुनना चाहेंगे कि किस तरह ऐसी बीमारी में भी आपने अपनी इन ईश्वरीय नियमों को, धारणाओं को, चाहे वो अमृत वेले का योग, मुरली हो, लेकिन ऐसी बीमारी में भी उन सब पर चलते हुए कैसे इस पर विजय पाई। हमें याद है 93 के बाद 2013 में ये ब्रेन कैंसर और ही मल्टीपल होकर आया, कई गुना बढ़ के आया, लेकिन उस समय भी उस चुनौती को कैसे स्वीकार करके फिर से आप और ईश्वरीय सेवाओं में और कैसे अपने को बिजी रखते हुए इतने आत्मविश्वास, दृढ़ता के साथ आज भी इस ब्राह्मण परिवार की, नीमच फुलवारी की, और सिर्फ नीमच फुलवारी नहीं, भारत के अनेक राज्यों की कैसे पालना करते हैं। हमें नीमच में हम देखते हैं कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो वो भाई साहब से अनुभव सुनता है, तो भाई साहब उसे यही दवा के साथ सबसे पहले कैसे राजयोग मेडिटेशन से वो ठीक हुए, ऐसे बाबा की बहुत सेवा होती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं अभी बड़ी दादी का मास चल रहा है, तो कैसे बड़ों के वरदानी बोल आपके जीवन में सिद्ध हुए, कैसे दादी का वरदानी बोल कि आपको निमित मात्र जाना है और आना है, ये अनुभव भी हम सुनना चाहेंगे भाई साहब से। और लास्ट में एक बात जरूर कहूंगी कि हमें याद है जब भाई साहब के इस बीमारी को जीतकर पूरे 25 साल सिल्वर जुबली हुई थी 2018 में, तब बाबा ने आपके लिए ये संदेश कहा था कि बच्चे के निश्चय को देख बाबा भी हैरान है। उसी निश्चय ने तन की बीमारी को जीता, मन तो बाबा के पास था ही, और कैसे ये तन आज भी इतनी सेवा कर रहा है। हम सब करतल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय
ओम शांति। थोड़ा प्यार से अंतर मन से बोलो ओम शांति। ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कहो, नाम सुनने में भयभीत कर देता है। वैसे तो हम राजयोग के मार्ग पर, ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पर 74 से ही थे, लेकिन 74 में जब हम ज्ञान के अंदर इस संपर्क में आए, इस ईश्वरीय संस्थान के संपर्क में आए, और ब्रह्मा कुमारी बहनों से जब हमारी पहली मुलाकात हुई, तो बस ये ब्रह्मा कुमारी बहनों का ही अद्भुत रूहानी स्नेह, आत्मिक प्रेम कि उनकी दृष्टि ने, उनके बोल ने हमारा सारा जीवन बदल दिया। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि हम पहले क्या थे, अच्छे परिवार से थे, पढ़े लिखे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे भावों को झकझोर देती है, मन आंदोलित हो उठता है और उसके अंदर कुछ ऐसे कर्तव्य, ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका गहरा असर फिर जीवन पर पड़ता है। ऐसी कुछ हिंसक गतिविधि हो गई और फिर हमें हमारे जीवन को एकदम पलट दिया। और जब जीवन में हम उस दिशा में बढ़ रहे थे, हम सोच रहे थे हम ही सही हैं, सारी दुनिया गलत है, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी, ये हमें ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सिखाया, समझाया, पढ़ाया। जैसे ही ब्रह्मा कुमारी महलों से साक्षात्कार हुआ, क्योंकि शिव के तो भक्त हम बचपन से थे, नीमच में हमारा एक बहुत सुप्रसिद्ध श्री किलेश्वर महादेव शिव मंदिर है, जहां के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा, नियमित जाना, वहां पूजा पाठ करना, आरती करना, मंदिर की सफाई करना, मंदिर का झाड़ू लगाना, और खास करके उस शिवलिंग के गर्भगृह में प्रवेश करके उसकी स्वच्छता का ख्याल करना, उसकी जलाधारी को बहुत स्नेह से हम पोंछते थे और बड़े प्यार से शिवलिंग को ही शिव बाबा समझते थे और वहां हम सेवा करते थे। भावना बहुत थी, लेकिन मन में कुछ प्रश्न भी थे, क्योंकि उस पर जब त्रिपुंड देखते थे, हम लगाते खुद अपने हाथों से ही थे, जब उसकी आरती के पहले जब सुबह सजावट होती थी पहली आरती की, तो त्रिपुंड हम अपने हाथों से लगाते थे, बीच में बिंदी लगाते थे, लेकिन उसका रहस्य जानते नहीं थे। और जब 74 के अंदर ये परिचय मिला कि तुम कौन हो और परमात्मा कौन है, और हमारी गाइड, हमारी टीचर जिसने ये ज्ञान दिया, बड़ी विद्वान, बड़ी विदुषी, शी वाज एमएससी एट दैट टाइम, उस समय किसी बहन का एमएससी होना, मास्टर डिग्री साइंस में लेना बहुत बड़ी बात थी। अभी कुछ समय पहले उन बहन जी ने देह त्याग किया है, तो हमारे हर तर्क का उन्होंने उत्तर दिया, संतुष्ट किया। पहले दिन हमने जब आत्मा का सबक सीखा, तो महसूस हुआ कि मैं हूं कौन, क्योंकि देह की दुनिया और देह के संबंधों से ऊपर कभी बुद्धि गई नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि एक निराकार कोई शक्ति है जो मैं खुद हूं, और वो परम शक्ति भी निराकार है और एक निराकारी दुनिया है। उस दुनिया के बारे में कभी सोचा नहीं, कभी संकल्प में, न ख्वाब में, न ख्याल में। लेकिन दूसरे दिन जब शिव बाबा का सत्य परिचय मिला, वो स्वयंभू शिव, जिसको शंभू कहते हैं, स्वयंभू अपनी रचना स्वयं करता है, वो कैसे अवतरित होता है, परकाया प्रवेश करता है, ब्रह्मलोक से आता है, प्रजापिता ब्रह्मा के तन के माध्यम से अपनी रचना रचता है और फिर ब्रह्मा बच्चों को एडॉप्ट करके नई दुनिया बनाता है। ये जब सारा सीखा, दूसरे दिन हम आपको सत्य कहना चाहते हैं कि धार धार आंसुओं की धार बहने लगी, जबकि हमारे अंदर बहुत कूट कूट के अहंकार भरा हुआ था, अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं थे, जो कुछ है बस हम ही हम हैं, हम ही सही हैं, बाकी सब गलत है, कोई नजर मिला के हमसे बात कैसे कर सकता है। एक गैंग भी साथ में हुआ करती थी, लेकिन जब वो पहाड़ पिघला, दंभ का जो मिथ्या दंभ था, वो पहाड़ पिघला, वो ग्लेशियर पिघला, तो गंगा बह निकली, एक निर्मल गंगा बह के निकली, सारा मलिनता हमारी धुल गई और हमने दीदी के आगे नतमस्तक होके उनके चरण स्पर्श कर लिए कि बहन जी, इससे बड़ा सत्य ज्ञान दुनिया में कोई हो नहीं सकता, आज आपने मुझे उससे मिला दिया जिसकी तपस्या मैं वर्षों से कर रहा था। उस परमात्मा शिव से मेरा मिलन करा दिया आपने, मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं आपको किन शब्दों में बताऊं कि मैंने वो अनुभूति तत्काल की और बहन जी से बोला, मुझे एक क्लास होता था, आपको याद है, मुरली क्लास ब्रह्मा कुमारी का, बहुत वर्ल्ड फेमस है, लेकिन उस समय साइक्लो स्टाइल से टाइप करके मुरलियां निकाला करते थे। हम भी जब मधुबन आते थे तो हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, जो हमारी मुख्य थी, हमें सेवा देती थी, कुमारों जाओ वो साइक्लो स्टाइल मशीन घुमाओ और वो प्रिंट निकाल के उसके प्रेस करके जमा जमा के उनको दो। वो मुरली उस समय आती थी, हमने दीदी से बहुत आग्रह से कहा कि वो मुरली हम सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें अनुमति दी और वो मुरली सुनी। और बुधवार का दिन था, मैं बहुत शॉर्ट में लेकर के वहां तक आना चाहता हूं ताकि आपको एक पृष्ठभूमि मिल जाए कि व्यक्ति राजयोग से कैसे परिवर्तन हो जाता है। और सत्य है, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूं जो परिवर्तन हुआ, हजारों लाखों ब्रह्मा कुमारी संस्था में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं आज कि जिनकी एक एक के एक एक पुस्तक बन सकती है। जब हमारी एक जो मुरली सुनाने वाली दीदी थी, उन्होंने बुधवार की शाम को कहा, मेरे लिए नहीं कहा, मैं जनरल में पीछे बैठा हुआ था, संगठन में कहा कि गल सदगुरुवार का दिन है, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से तपस्या करना है, उठ करके उसको याद करना है, और सदगुरुवार के दिन शिव बाबा को भोग लगेगा, अतः सभी श्वेत वस्त्र पहनकर आए। अब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था ये, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल हिप्पी कट, बड़े बड़े बाल, पेंट वो एलिफेंटा टाइप चितकबरा, उल्टा सीधा कपड़ा, मूछें बड़ी दाढ़ी, बिल्कुल इस रूहानी दुनिया के लिए तो उठपटांग था वो, लेकिन दुनिया के लिए फैशन था वो, लेकिन मैं तो उस दुनिया को छोड़ के इसमें आ गया था और सारा समझ में आ गया था कि यही सत्य है। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी, शिव बाबा रात को 9 बजा है, कल मुझे 3:30 बजे उठना है, तपस्या करना है, सफेद कपड़ा पहनना है, वो कैसे होगा? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आज विनती करता हूं कि मुझे आज की आप परमिशन दे दो कि आज तो मुझे इस पुराने सुरेंद्र को जिंदा रखना पड़ेगा, तभी मैं कपड़े भी सिलवा पाऊंगा, दुकान खुलवा के कपड़ा भी ले पाऊंगा, नाई की दुकान खुलवानी पड़ेगी, कटिंग भी बनानी पड़ेगी, टेलर की दुकान भी खुलवानी पड़ेगी, कपड़ा भी सिलवाना पड़ेगा, अभी रात ही रात में 12-1 बजे तक, तो वो तो पुराना सुरेंद्र ही कर सकता है, ये नया सुरेंद्र को तो दुनिया नहीं समझेगी, कोई मेरी प्रार्थना को नहीं मानेगा। भगवान ने परमिशन दी या नहीं दी, मैं मेरे मन में पिन में अपने आप को ही परमिटेड कर लिया, स्वीकृति दे दी खुद ही मन को और चला। वो उसमें दुकान खुलवाई, वो सब टमके बोले क्या बात है सुरेंद्र, तेरा बुद्धि क्या हो गया, तू सफेद कपड़ा मांग रहा है। उन्होंने भी दे दिया, खैर नाई ने भी खुलवाई दुकान, नाई बेचारा बोले भाई सब खाना खाने जाना है, मैंने कहा खाना वाना खा लेना, दुकान खोलो कटिंग बनाओ, टेलर को भी कहा कपड़ा भी सी के देना, वो भी बेचारा डरता था, बोले यार तुम्हारा कपड़ा जरा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, पिछली बार तो तेरे मेरा शोकेस फोड़ दिया था, अब तुम कुछ कर दोगे यार, मेरे को माफ करो। मैं सुबह बोले, मैंने कहा बीसी हो तुम, जैसा भी हो मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम हैंगर पे जैसे कपड़े टांगते हो वैसे टांग देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम सी दे बस। 12:30, 1-2 बजे मैं तैयार होके कपड़ा चेंज करके दाढ़ी वाड़ी बना करके और घर में पहुंचा, तो माँ देखते ही डर गई, बोली ये क्या हो गया इसको, दरवाजा खोला, माँ बुरी तरह से चौंक गई, सुरेंद्र 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 क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा माँ तू सो जा, तेरी समझ में भी कुछ नहीं आएगा, तू शांत होकर सो जा, मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से। घर वाले मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, ज्यादा उलझते नहीं थे, कि उसे मालूम है इसको समझ में कुछ आने वाली नहीं, इसको जो करना है वही करेगा। खैर वो सब कुछ हुआ, मैं सुबह पहुंचा, 3:30 बजे मैं आश्रम पे पहुंच गया, मैं बैठा हूं, मैंने अब दरवाजा खुलेगा, अब दरवाजा नहीं खुला, मैंने खटखट किया तो दीदी ने खिड़की में से झांका, बोले भाई कौन है, लाल लाइट जल रही थी अंदर देख रहा था मैं। मैंने कहा दीदी आपने कहा था 3:30 बजे उठ के तपस्या करना है, तो मैं आ गया हूं, दरवाजा खोला ही नहीं आपने। तो बोले हमने ये थोड़ी कहा था कि यहां तपस्या करना है, अपने घर पे करना है। ठीक है घर पे कर रहे, बैठ गया आराम से बगीचे में। खैर वो जीवन बदला हमारा, वो उसमें हम ज्यादा नहीं जाते, पूरा जीवन बदल गया। लेकिन हाँ अगला सदगुरुवार का दिन था, जो जीवन में परिवर्तन, प्रतिज्ञा से परिवर्तन, दृढ़ता से परिवर्तन। मैं बहुत जिद्दी आदमी था, जो ठानता था वो करता था, गलत काम में भी अगर मैं जिद कर लेता तो जीत के ही निकलता था। ये मेरी प्रतिज्ञा थी कि कोई मुझे हरा नहीं सकता, मैं विजयी शुरू से रहा, कई गलत अर्थों में भी रहा, वो मैं सही नहीं कहता उसको, वो गैर कानूनी बातें भी होती थी, लेकिन बहुत अहंकार था। तो बाबा से मैंने कहा बाबा सदगुरुवार का भोग, दीदी ने कहा भोग लगेगा, उसमें आप जो संकल्प लेंगे, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं बहनों भाइयों आपको, कि जब गुरुवार को बाबा को भोग लगता है ना, हमारे कई भाई बहन उस भोग को उठ के चले जाते हैं, और उस भोग के दौरान का जो योग होता है बाबा से, जो कनेक्टिविटी मिलती है, उसका लाभ नहीं लेते। उस भोग में मैंने बाबा से कहा बस बाबा आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं पूर्ण परिवर्तन कर लूंगा, अब किसी हिंसा के लिए हाथ नहीं उठेंगे, अब किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोले जाएंगे। और 3 प्रतिज्ञाएं मैंने ली, वो मैं आपको सुनाता हूं, आप भी वो करेंगे तो जीवन में आमूल चूल बदलाव और भगवान की मदद का हमेशा एहसास करेंगे आप। पहली प्रतिज्ञा कि बाबा हम अमृत वेला सुबह 3:30 का योग अब कभी मिस नहीं करेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे, चाहे हम रात को 2 बजे भी सोएंगे तब भी हम अमृत वेला अवश्य करेंगे, और यकीन मानिए वास्तव तक बरकरार है। जब हॉस्पिटल में बहुत गंभीर थे, वो बाद में सुनाऊंगा, बहुत गंभीर थे, डॉक्टर कहता था ये करना है इतनी बजे, मैंने कहा नहीं, वो 3:30 बजे तो उठना ही है मुझे। दूसरी प्रतिज्ञा की कि भगवान के महावाक्य जिनसे मेरा जीवन बदला, वो टाइप किया हुआ पेपर जो दुनिया के लिए साधारण है, मेरे लिए आप सबके लिए गीता है, वो गीता है, वो महाशास्त्र है, सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, सारे संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसमें लिखा हुआ है। मैंने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस मुरली का अध्ययन मनन वाचन श्रवण में नहीं कर लूंगा, तब तक पानी के अलावा और कोई भी चीज ग्रहण नहीं करूंगा, न चाय, न दूध, न कॉफी, न नाश्ता, न अन्न, कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। और मैं बहुत नशे से कहता हूं, आज हमारे भाई साहब ने, किसी ने पूछा भी था कि, बहन ने पूछा था कि मुरली किसकी मिस नहीं हुई कभी भी, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि लगभग 49 सालों से कभी भी किसी भी हालत में हमारी मुरली मिस नहीं हुई, और इसी मुरली ने मेरी जान की रक्षा की है, वो मैं बताऊंगा आगे। तीसरी प्रतिज्ञा हमने की, उस समय हम जॉब भी करते थे, वो स्टोरी अलग है कि हम रेलवे में खेलते थे और एजुकेशन बाबा ने एक शिक्षक बनाने की प्रेरणा दी हिस्ट्री हॉल में हमें, वो स्टोरी अलग है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। बाबा ने शिक्षक बनने के लिए प्रेरणा दी थी, जब हम हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिलन मनाते थे लगातार 2-3 साल तक। तीसरी प्रतिज्ञा हमने की कि जो भी मेरा हाथ में मेरा वेतन आएगा, उसका पहला हिस्सा मैं भोलेनाथ की भंडारी में डालूंगा, उसके बाद ही उस पैसे को हाथ लगाऊंगा, उसके बाद ही वो पैसा यूज करूंगा। बजाइए ताली, बजाइए आराम से, बहुत अच्छे से बजाइए ताली। ये प्रतिज्ञाएं, ये दृढ़ताएं, वो जो जिद थी हमारी, उस जिद को हमने दृढ़ता में परिवर्तन किया। और ये जब धन उसमें जाने लगा, तो धन जाने नहीं लगा, कई गुना होकर के हमारे पास आने लगा। आज तक हमें कभी धन की तंगी देखना नहीं पड़ी, कभी नहीं, नेवर, सोचना भी नहीं पड़ा। और खुले दिल से, चाहे बाबा का यज्ञ है, चाहे कोई गरीब है, कोई असहाय, किसी को पढ़ने की फीस चाहिए, बच्चों को किताबें चाहिए, कन्याओं को कोई मदद चाहिए, बाबा करवाते हैं। तो इन 3 प्रतिज्ञाओं से हमारा जीवन अच्छा चल रहा था। अब मैं आता हूं शॉर्ट कट लेकर के कि मुझे ब्रेन ट्यूमर कैसे हुआ, जो कि आज का मुख्य विषय। ब्रेन ट्यूमर 1992 से कुछ लक्षण उभरने लगे, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, लेकिन एक संस्कार था कि चलो होता रहेगा, ये तो चल रहा है, कोई बात नहीं। और नीमच बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, एक छोटा टाउनशिप है, आज वो डिस्ट्रिक्ट है। बहुत बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज भी वहां नहीं थी उस समय। हमने डॉक्टर को दिखाया, वहां के उस समय के सबसे ज्यादा जाने माने डॉक्टर चौधरी साहब थे, उनके पास हम गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ प्राइमरी दवाइयां दी, उसके बाद रोग बढ़ने लगा। उन्होंने कहा आर्थोपेडिक को भी एक बार दिखा लो, एक आर्थोपेडिक को भी हमने दिखाया। उन्होंने कहा आप एक बार आंखों के डॉक्टर को चेक करा लो, वहां शायद कुछ पता लगे क्या हो रहा है, क्योंकि आगे अचानक अपीयरेंस गायब हो जाता, आंखों से दिखना बंद हो जाता, अंधेरा आ जाता, फिर वापस लाइट आ जाती। तो आंखें दिखाने के लिए गए उस समय। आज नीमच का बहुत बड़ा एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, गोमाबाई नेत्रालय, जहां आंखों का बहुत बड़ा अस्पताल है, आंखों के सारे रोग का इलाज होता है वहां। वहां एक डॉक्टर थे हमारे पुराने, डॉक्टर प्रशांत गर्ग। उन्होंने जब मेरी आंखों का बहुत गहरा चेकअप किया तो उनके मुझे मैंने समझा डॉक्टर साहब को क्या खड़े खड़े कुछ काट खाया दिखे। मैंने डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? बोले मेरे को नहीं आपको हो गया। मैंने कहा क्या हो गया मेरे को? बोले आपकी आंखों के ऊपर बहुत बड़ा ट्यूमर है आंखों के पर्दे के पीछे, और आपकी आंख कभी भी जा सकती है, ये ट्यूमर ब्लस्ट हो जाएगा और आंखें बचने वाली नहीं। चलो, घबराने की आदत बचपन से नहीं थी, डरने की आदत बचपन से नहीं थी, निर्भीकता भगवान ने गिफ्ट में दी हुई थी। मैंने कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप इतनी मेहरबानी करना कि मेरा बड़ा भाई बाहर बैठा है उसको मत बताना। क्यों? अस्पताल कौन ले जाएगा आपको वहां? डॉक्टर सेफी से चेक कराना जाना, आपको उदयपुर कल ही जाना है। मैंने कहा ऐसा मत बोलना आप जल्दीबाजी में कुछ भी, मैं कल जाने वाला नहीं हूं। बोले फिर क्या करोगे? मैंने कहा मुझे मालूम है अभी हो गया। बोले आप बहुत मुश्किल है, बोले लाइफ आपका तो बस। मैंने कहा फिर मैं वाइंड अप करके ही जाऊं ना, फालतू झंझट में काय को पड़ू, मैं अपना वाइंड अप करके निकलूंगा। तो वो कुछ समझे नहीं। मैंने कहा प्लीज आप इतना कह देना कि बस ठीक है, आंखों का इलाज है, मैंने दवा गोली लिख दी, हो जाएगा ठीक। ऐसे करके उनको बोलने नहीं दिया और मैं घर गया और बस। फिर आराम से मैं नौकरी में गया। मैंने पूछा भाई मेरा प्रोविडेंट फंड कितना जमा है, कितना क्या टाइम है, क्या है, वो सब वाइंड अप मैंने किया। और मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा इतना पैसा निकाल दो, ये निकाल दो, और कुछ एफडी थी, एफडी भी थोड़ा वाली मैंने तैयारी करके, मुझे मालूम था कि मुझे अब जाना है और वापस नहीं आना है, तो सब तैयारी करके। भाई समझ नहीं पा रहा, बड़ा भाई जाता था मेरे पास लेके मुझे, हमारे बड़े भाई बहुत ही प्रिय, बड़े आदरणीय हैं, तो वो हमको लेके गए डॉक्टर सेफी साहब को दिखाया। आज भी हैं वो, बहुत फेमस न्यूरोफिजिशियन है आज भी उदयपुर में। जब उन्होंने देखा तो उस समय वहां पे सिटी स्कैन और एमआरआई नहीं होता था, उदयपुर में भी नहीं होता था, तो उन्होंने ईईजी निकाला। उन्होंने कहा मिस्टर सुरेंद्र भाई ये केस बहुत क्रिटिकल है और आप फौरन अहमदाबाद बॉम्बे रवाना हो जाओ और वहां आप दिखा दो जो भी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वहां से उदयपुर से अहमदाबाद निकल गए। अहमदाबाद में जब चेकअप हुआ, सिटी स्कैन हुआ, तो डॉक्टर पी आर ठाकुर बहुत नामी ग्रामी फिजिशियन थे, उन्होंने जब देखा तो सिटी स्कैन आज भी हमारे पास मौजूद है सारा रिपोर्ट। वो जब रिपोर्ट आया तो हमारा भाई और हमारी मां भी साथ में गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो डॉक्टर भैया, तुम बाहर जाओ और अपने भाई को कहा आप रुक जाइए, और मां को भी कहा बेटा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको बाहर भेज दो और मेरे से बात करो जो कुछ करना है। बोले नहीं 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 आप डरो मत। अरे मैंने डर कौन रहा, इसलिए तो कह रहा हूं कि मेरे से बात करो, आप जो कुछ करना है मेरे से करो, वो बेहोश हो जाएंगे बेकार के अंदर, मेरे कुछ होने वाला नहीं। तो बता रहे थे, मैंने कहा मुझे मालूम है ट्यूमर, वही बता दिया था, आप क्या नई चीज बता रहे हो उसमें। अरे पर कितने ट्यूमर है मालूम है? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, एक से ज्यादा है। बोले नो ट्यूमर है ब्रेन में, नो। चलो ठीक है, भे तो है, क्या करें, परेशानी क्या बात है, तो है। पर उन्होंने कहा मेरे को मशीन पे डाउट हो रहा है, इतने ट्यूमर होते ही नहीं ब्रेन में, कभी संभव ही नहीं, इतने ट्यूमर वाला आदमी जिंदा कैसे रह सकता है। डॉक्टर पी आर ठाकुर ने दूसरे डॉक्टरों को बुलाया, दो उनसे कंसल्ट किया, कॉन्फ्रेंस की, और दूसरी मशीन पे उन्होंने मेरा सिटी स्कैन निकाला। उस समय एमआरआई भी नहीं होती थी अहमदाबाद में, भी नहीं होती थी 93 में, एमआरआई अवेलेबल नहीं होती थी, सिटी स्कैन होता था। दूसरी मशीन ने भी वही नो रिजल्ट दिया, तब वो बड़े चौंक गए, बोले भाई ऐसी ऐसी बात है और अब क्या करना है, आप फौरन ऐसा करो इनको एडमिट कर लो यहां पे। और मैंने कहा एडमिट तो अभी मैं नहीं हूंगा, मेरे को अभी टाइम भी नहीं एडमिट होने का, बोले तुम बात करते हो टाइम नहीं, अरे तुम्हारे पास टाइम है कहां? अब मेरे का है, जितना भी है उससे क्या दिक्कत है? तो बोले क्यों? फिर हमने दादी को फोन लगाया, नीमच, हमने कहा पहले नीमच जाएंगे हम, अभी इतने जल्दी नहीं, अभी हमको बहुत सारे काम निपटाने हैं और 5-7 दिन के बाद हम जाएंगे। बोले बहुत जिद्दी आदमी है, बात सुनता नहीं, डॉक्टरों की कोई मानता नहीं, ठीक है तुम्हारी मर्जी है जो करो, हमारा क्या है, ऐसे डांट डपट के। अरे हाँ मैंने जो भी करना है आप तो छुट्टी करो, मेरे को जाना। चलो भाई चलो, भैया को बोले का चलो नीमच चलो, वापस आ गए नीमच। नीमच से समेटा समेटी करके फिर तो भाई को पता लग गया था, बड़े भैया को पता लग गया था, उन्होंने फिर माँ बाप को भी इशारा दे दिया था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा मातम सा घर में होने लगा। तो मैंने कहा देखो भाई, अब चूंकि ज्ञान मिल चुका था, ज्ञान में पक चुके थे, 20 साल का ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तो निश्चय पूरा था बाबा में, पूरा उससे कनेक्शन था, ज्यादा देहमान नहीं था, रूहानियत थी, तो कोई चिंता नहीं थी। ओनली 2 मिनट डॉक्टर साहब, बाय योर परमिशन, लास्ट 2 मिनट। तो वो उसको मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ाता हूं। वो डॉक्टर के पास हम गए, दादी से मिले, वो दादी का एक सीन सुन लेना आप। दादी ने कहा सुरेंद्र नीमच आ जाओ, दादी से मेरा बहुत बहुत प्यार, दादी ने मुझे बहुत प्यार से, जहां दीदी बैठती वहां दादी मिलती थी, दीदी के ऑफिस में, दीदी तो जा चुकी थी उस समय, तो दादी ने मुझे बहुत प्यार से बिठाया अपनी गोद में, ऐसे मैं सोफे पे मैं नीचे बैठा दादी के पांव में, दादी ने गोद में मेरा सिर रखा, एक मक्खी भी आई उसको अपने आंचल से हिलाई, और दादी ने कहा सुरेंद्र निमित्त जाना है और आना है। बस वो दादी के महावाक्य वरदान बन गए मेरे लिए, जीवनदायी बन गए। फिर हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, वो स्टोरी बहुत बड़ी है। 1.5 साल हम शाह कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती रहे, बहुत कुछ हुआ, वो भी एक पंचर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो भी बड़ा खतरनाक होता है, उसमें भी वो एनेस्थीसिया नहीं देते, पता नहीं कैसे क्या होता है। वो डॉक्टर साहब बैठे मेरे, हमारे परम मित्र हैं डॉक्टर साहब, बताएंगे आप। तो वो जो हुआ ना, तब भी हमने राजयोग का प्रयोग किया, हम जिद पे थे कि हम महिला की गोद नहीं लेंगे। एक नर्स थी जो पकड़ लेती थी पेशेंट को और जैसे बेल्ट बांध देती थी गर्दन पे, हो रही है, मेरे को ऐसा लगा यार मैं कोई पालतू कुत्ता तो नहीं हूं जैसे बेल्ट बांध दे और कमर में हड्डी में छेद करें, तो मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो राजयोगी हूं। मैंने बाबा से बातचीत करी, डॉक्टर को मैंने कहा आप देखो मेरे को 2 मिनट अकेला छोड़ दो, मैं आप जिस पोस्चर में कहोगे उस पोस्चर में मैं बैठ जाऊंगा, मेरी गर्दन भी झुका लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारा वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं है, तुम हमारे से खिलवाड़ मत करो। मैंने कहा देखो खिलवाड़ की बात नहीं, मैंने पैसा दिया है आपको और आपने मेरे सारे फॉर्म भरवा लिए, मेरे माँ बाप के भी साइन करा लिए, मरना तो मेरे को है। बोले वो निडिल टूट गया अंदर तो कौन जिम्मेदार? मैंने कहा मैं जिम्मेदार, निडिल टूटेगी तो मेरे अंदर टूटेगी, आपका क्या जाएगा? चलो तुम नहीं मानते हो तो। मैंने कहा 2 मिनट अकेला छोड़ दो। मैंने बाबा से बात की, बाबा दीदी को अपने वतन में रखा था, आपको जिसको भी नॉलेज होगा, जब हॉस्पिटल में थी डॉक्टर जस्टिस पी एन भगवती के भाई डॉक्टर भगवती उनका ऑपरेशन कर रहे थे, बॉम्बे में थी, तो वतन में दीदी का एक उलाना था, बाबा ने मुझे दूर कर दिया इन टाइम पर, दीदी को बाबा ने वतन में खिलाया था, नीचे ऑपरेशन हो रहा था, दीदी वतन में थी। बाबा मैं भी बहुत छोटा बच्चा हूं पर हूं तो तेरा ही बच्चा, अब मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी इनको, राजयोगी हूं मैं, ये हूं वो हूं, इतनी औकात तो मेरी है नहीं जितना मैंने बता दिया इनको, पर ऑन बिहाफ ऑफ यू मैंने बोल तो दिया, आप करना तो आप ही को पड़ेगा। और वाकई करता है बाबा, मुझे बिल्कुल अशरीरी बना दिया और मेरे उसमें 1 छेद 2 छेद 3 छेद, वो डॉक्टर पसीना हो गया, बोले यार हेलो 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 ब्रह्मा कुमार, मुझे बोलते थे हेलो ब्रह्मा कुमार आर यू ओके, मैंने कहा यस यस, तो बोले अभी नहीं फ्लूड मिल रहा है आपका, पूरा ड्राई हो गया स्पाइनल कॉर्ड, फ्लूड नहीं है इसके अंदर, 4-5 छेद के बाद भी फ्लूड नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं, कल सीनियर डॉक्टर को बुलाऊंगा, अब कल फिर से करेंगे। मैंने नो 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 डॉक्टर आज ही करो, जितना करना आज आप कर डालो, सीनियर विनियर कुछ नहीं, बोले अरे भाई हड्डी में छेद हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत तकलीफ होती है। अरे मैंने कहा होने दो, आप तो कर डालो जितने करना आज आप कर डालो, क्योंकि मुझे मालूम है उधार का मामला है। आज भगवान ने वतन में खींचा, कल खींचे कि नहीं खींचे, तो कर डाल। मैंने कहा जितने दर करना। आखिर 11वें या 12वें छेद में उनको फ्लूड मिला, वो मेडिकल रिपोर्ट में हमारी पूरी फाइल है उसमें सब लिखा है उन्होंने। और फिर वो मेरे को स्ट्रेचर ले आए, चलो बैठो डालो। मैंने कहा स्ट्रेचर काहे के लिए? मैंने कहा मैं खुद चल के जा सकता हूँ, मेरी माँ मेरे को स्ट्रेचर में बाहर देखेगी मर जाएगी वो, मेरे को मैं तो खुद ही अपना लपेटा यूं वो रखा वो चल बाहर पैदल पैदल। कुल मिला के वो सब छोड़ के मैं वहां आ जाता हूं, क्योंकि देखो स्टोरी तो बहुत बड़ी है। मैं आपको वो सीन दिखाता हूं भगवान क्या कर सकता है, भगवान क्या पावर है। जैसे मैंने आपको बताया ना ऑल माइटी की मम्मा से बात, भगवान की कितनी पावर है, वो निराकार शिव कितना सर्वशक्तिवान है। 1 फरवरी 1994 वाज द डे, वो दिन था 1 फरवरी 1994, ओम शांति भवन मधुवन पांडव भवन जहां हम अभी जाने वाले हैं, उसके अंदर बाप दादा की पधरामने थी सर्वशक्तिवान आदरणीय हमारी गुलजार दादी जी के रथ में विराजमान थे। और मेरे पूरी पैरालिसिस, पूरी बॉडी कोलेप्स हो चुकी थी, आवाज जा चुकी थी, आंखों से दिखना बंद हो चुका था, गर्दन ऐसी, हाथ पैर सब हो चुके थे, सब खत्म हो चुका था मुझे। और स्टेशन पर निकाल दिया था और दादी ने कहा था सुरेंद्र मधुबन आ जाओ, मैं वहीं शरीर छोड़ने के लिए बैठा हुआ था। भोगों की व्यवस्थाएं कर दी थी, अंतिम संस्कार कौन करेगा वो भी डिसाइड कर दिया था, सारा कुछ कर दिया था, यहाँ ये होगा वहां होगा। मैं मेरे निश्चिंत होकर मधुबन बैठा था, घर वालों को भी कह दिया यहाँ कुछ नहीं होगा, रोना धोना वो सब व्यवस्था कर दी थी। अब रात को 10 बज गया, बाबा आए, मुरली क्लास चला, 5000 की सभा लगी हुई है 1 फरवरी 1994, याद रखना वो दिन। बाबा आए, दादी ने माइक हटा के बाबा से फिर कुछ बातें की। रात को 10 बजे के लगभग मैं कोने में एक सोफे पे मुझे पकड़ के बिठा देते थे 2-3 लोग, उसमें से आज भी वो चंद्रशेखर और वो तुलसी भाई और वो शशिकांत वगैरह हैं जो मुझे सोफे पे बिठा के ले जाते थे। वीरेंद्र भाई भी दवा डालते थे। वीरेंद्र भाई यही है क्या? ये वीरेंद्र भाई है, हाँ वो दत्ता भाई, वो डॉक्टर बलवंत की दवा डालते थे उस समय। तो बस वो मैं शॉर्ट करके एकदम उसको समेटता हूँ, लास्ट सीन बताता हूँ, फिर इसके बाद समाप्त करेंगे। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आके बैठे हैं आपसे मिलने के लिए, उनकी क्लास मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बाबा ने कहा बच्चे को स्टेज पे लाओ, बस वो सीन ध्यान से सुनना। दादी ने कहा सुरेंद्र को स्टेज पे लाओ, दादी सुरेंद्र कहती थी, सुरेंद्र को स्टेज पे लाओ। अब मेरे लिए चलना संभव नहीं था, वहां से पकड़ा 2-3 भाइयों ने, और आगे ब्रह्मा कुमारियों की लाइन बैठती थी और बाकी किसी को जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि टीचर्स का पहले अधिकार होता। हमारी सविता दीदी सामने यहां बैठी, ऐसी कैसी सामने ये भी बैठी थी वहीं उसी सीन के आगे। अब मुझे लाया गया स्टेज के ऊपर, जैसे तैसे चढ़ा करके और लाके मुझे बाबा के सामने मैं खड़ा हुआ। जैसे यहाँ बाबा मैं इतनी दूर ये फूल रखे, 7-8 फीट दूर मैं खड़ा हुआ, घबरा सा गया, क्योंकि बाबा से व्यक्तिगत मिलन खत्म हो चुका था। जो मिलन 74 से लेके, क्योंकि 83 में वो हॉल ओपन हुआ था तो मिलन व्यक्तिगत नहीं होता था। बाबा ने दृष्टि दी, जो कि हमारी परंपरा है राजयोग में, दृष्टिपात से शक्तिपात होता है। बाबा से मेरी जैसी नजर मिली, एक लाइट का फ्लड मेरे ऊपर आया। मुझे जिंदगी में आज तक कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, वो साक्षात था लेकिन वो साक्षात्कार नहीं था। वो फ्लड ऐसा आया मेरे ऊपर लाइट का कि मैं उसको झेल नहीं पाया और मैं लड़खड़ा के नीचे गिर गया और ऐसे हाथ टिक गया और ऐसे सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस भी नहीं कहूंगा, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है लेकिन मैं सब भूल गया कि मैं कहाँ हूं, कहाँ बैठा हूं, सामने भगवान बैठा है, ये कुछ भी ध्यान नहीं रहा। हाँ ये जरूर लगा कि एक माँ के पेट में जब वो भ्रूण होता है, जैसे टेढ़ा बच्चा माँ के पेट में होता है, मैं शायद वो मुझे दिखा कि शायद मैं वो बन गया, बस वही मेरा नया जन्म था। इतने में दादी की आवाज आई, सुरेंद्र उठो सुरेंद्र, वो मधुर वाणी में भूलता नहीं हूं, उठो सुरेंद्र उठो। तो मुझे लगा मुझे कोई आवाज दे रहा है, मैं उठा और खड़ा हो गया। ताली बजाओ भाई, खड़ा हो गया मैं, खड़ा हो गया वो शरीर मेरा जो मुर्दा था वो खड़ा हो गया। और खड़ा होकर जब ताली बजी 5000 सभा में, तो मैं भौचक का, ये तालियां क्यों बज रही है? मैं इधर देख रहा हूं उधर देख रहा हूं, गर्दन भी मेरी सीधी हो गई और ठीक ठाक हो गया। आश्चर्य, खड़ा हो गया बिल्कुल, हाथ पैर मूवमेंट करने लगे। वो दिन है, आज का दिन है। मैं धीरे धीरे, वो मैं डिटेल में नहीं जाता, फिर एक फूल दिया दादी ने, वो फूल मैंने मस्तक पे लगाया दादी ने, वो पीला गुलाब मेरे पास आज भी मौजूद है। आज भी उसमें उतनी ही शक्ति मौजूद है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है मैं उस फूल को आज भी यूज करता हूं। ये चमत्कार है, ये भगवान का चमत्कार है। और चमत्कार तो होते हैं। एक लास्ट और लेता हूं कि मेरे ऐसे चल रहा था मेरा जीवन, 2013 में बहुत जबरदस्त ब्रेन स्ट्रोक आया मुझे फिर से, और मैं बाथरूम में गिर गया। हमने कमरे में ऐसी व्यवस्था कर रखी है अपने कमरे में, मुझे मालूम है मेरे को सुबह उठना नहीं है, अचानक कुछ भी हो सकता है, ट्यूमर काफी बड़े हुए हैं, तो ऐसी व्यवस्था कर रखी, ताला की चाबी बहनों के पास रहती है मेरे पास, ताकि अगर मैं कभी शरीर छोड़ दूं कमरे में तो कम से कम भगवान के घर का दरवाजा तोड़ना नहीं पड़े, मेरी बॉडी निकाल सकें, उसे आराम से मैं सोता हूं। तो आया अटैक बहुत जोरदार आया, पूरा झाग निकल गया, मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर सब टेढ़े हो गए। फिर बहने, मैंने घंटी बजाई, इमरजेंसी बेल बजाई, एक इमरजेंसी बेल है, बहने भाग के आई, भाई भाग के आए, मुझे उठा के अस्पताल ले गए, वहां से मुझे फिर अहमदाबाद ले गए स्टर्लिंग में। आज भी न्यूरोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर सुधीर शाह, जो आज भी हैं डॉक्टर सुधीर शाह हैं आज भी। उन्होंने जब मेरा देखा तो उन्होंने सबसे पहले कहा ओ माय गॉड। मैंने कहा यार डॉक्टर को क्या हो रहा है? तो बोले आपको पता है? मैंने कहा पता है। रात को जब सामवेद में थ्री डी सामवेद हॉस्पिटल मेरा जब MRI निकाला, तो बोले आपके ब्रेन में अंगूर के गुच्छे के माफिक ट्यूमर है, पूरा ब्रेन ढका हुआ है ट्यूमर से। ठीक है, मैंने कहा ढका हुआ है तो ढका हुआ। उन्होंने उनका, क्योंकि जब वो डॉक्टर चलते हैं तो उनको असिस्ट करते हैं कम से कम 5-6 डॉक्टर उनके साथ, उन्होंने कहा ये करो वो करो वो करो। खैर मैंने उनसे छुट्टी ली जबरदस्ती, मैंने कहा मेरे को इलाज इलाज कुछ नहीं कराना, आपके पास इलाज है भी नहीं, आप कर भी नहीं सकते हो, फिर स्ट्रेचर पर डाल के निकाल दोगे, ले जाओ डेड बॉडी उठा के, मेरे को जाने दो, मेरा बाबा जो करता है, करने वाला कोई और है, वो जो करा रहा है, जो करता है वो दिखता नहीं, जो नहीं करता वो दिखता है। और आज मैं ठीक ठाक चल रहा हूं, आई एम क्वाइट ओके, आई एम नियर अबाउट 70 और बहुत मस्त हूं, आनंद में हूं। और आप सबकी दुआ है, आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।